şimdi.
Burley Hill, 26th March, 93. अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ. आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं. आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं. साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख हैं. दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं. सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान आकारी साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बने, बाप समान बने. बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे थे. क्या दिखाई दिया? मेजोरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण अभी कभी दृढ़ है कभी साधारण है. लक्ष्य और लक्षण में समानता है, यह निशानी है समान बनने. लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है बाकी नंबर है, लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहां तक है? इसमें माइनॉरिटी 90% तक है, बाकी और नंबर वार. तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण. कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन यह नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें भी और अटेंशन चाहिए. यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो. यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं. और कौन सा गीत गाते हैं? एक ही गीत है बाबा के पास. वाह बच्चे, वाह का गीत भी गाते हैं. साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं. आप सब भी यही चाहते हो ना? बाप भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, फिर बीच में बाकी क्या है? वह भी अच्छी तरह से जानते हो, आपस में वर्कशॉप करते हो ना. तो निराकारी और आकारी बाप दादा, निराकारी शिव और आकारी ब्रह्मा, किसको देख रहे? सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के दो रूपों को देख रहे, एक आकार रूप और एक साकार रूप. वो निराकारी और आकारी किसको देख रहे? आकारी और साकारी रूप, दो रूपों को देख रहे हैं. और लक्ष्य क्या है? जो लक्ष्य रखा है वही लक्षण हो. लक्ष्य क्या है हमारा? मनुष्य से देव, फरिश्ता से ब्राह्मण, से फरिश्ता और देवता, साकारी आकारी और निराकारी. तो लक्ष्य और लक्षण में समानता लाना, यह निशानी है समान बनने की. जो लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण दिखाई दे. जैसे कोई विद्यार्थी अगर ये सोचे कि मुझे पहले 5 में आना है, तो वो सभी चीजें छोड़ देता है जो अब तक कर रहा था, जो कि उसके मार्ग में बाधा है. टीवी देखना छोड़ देगा, और भी यहां वहां खेल कूद करता था वो सब छोड़ देगा, क्योंकि उसने लक्ष्य को बहुत महान बना दिया है. उसने लक्ष्य रखा है कि मुझे 5 में आना है. कोई व्यापारी अगर ये लक्ष्य बना दे कि मुझे एकदम सबसे टॉप पर जाना है, तो वो सारी चीजें छोड़ देगा जो कि वो पहले करता था. अपनी नींद को कम कर देगा, अपने एंटरटेनमेंट को कम कर देगा, टीवी देखना कम कर देगा. जिस सेना ने लक्ष्य रखा है विजय का, वो सेना में एक अतिरिक्त उमंग उत्साह होगा, एक एक्स्ट्रा पावर होगी उनमें, एक उमंग उत्साह अलग प्रकार का होगा, क्योंकि उन्होंने एक लक्ष्य रखा है ना, तो ऑटोमेटिक लक्षण आ जाते हैं उसके अनुसार. तो सबसे मुख्य बात तो है कि लक्ष्य को बहुत महान बनाना, बहुत ऊंचा रखना, हाई, वेरी हाई टारगेट. एम जो रखना है वो बहुत ऊंचा रखना है, भले उसमें उसको प्राप्त करने में बहुत बार कभी रुकेंगे कभी गिरेंगे, पर बार बार लक्ष्य को याद दिलाना, लक्ष्य की स्वयं को याद दिलाना कि मेरा लक्ष्य ये है, तो वो स्मृति ही आगे हमको बढ़ाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि लक्ष्य और लक्षण में समानता आना, लक्ष्य अगर श्रेष्ठ है तो लक्षण स्वतः ही श्रेष्ठ होना चालू हो जाएगा। और वो कैसे हो जाए, लक्षण भी कैसे हो, नेचुरल और नेचर इतने सहज हो जाए, क्योंकि जो वस्तु नेचुरल है वही निरंतर है, जो थोपी हुई है जबरदस्ती लाई हुई है वो लंबा समय नहीं चल सकती। तो ये कैसा होना चाहिए, नेचुरल, नैसर्गिक नेचर, ऐसी हमारी नेचर ही हो जाए वो। समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण, कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान बनाते भी है, लेकिन यह नेचर, यह नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। बाबा बार बार ये बात कहते हैं कि पुरुषार्थ जो भी हमारी धारणाएं हैं वो सभी कैसी हो जाए, नेचुरल हो जाए, सहज जीवन, सहज पुरुषार्थ, सहज ज्ञान, सहज योग, सहज धारणाएं, सहज सेवाएं, स्वतः ही सब कुछ होने लगे। ऐसी हमारी स्थिति हो कि जिसमें कोई द्वंद ना हो, रात को नींद आने में कोई द्वंद नहीं, सुबह उठने में कोई द्वंद नहीं, योग में कोई संघर्ष नहीं, ज्ञान को धारण करने में, समझने में, याद रखने में, उसका स्वरूप बनने में भी कोई संघर्ष नहीं, सहज 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 सेवाओं में भी कोई खींचाता नहीं। ये बहुत ऊंची अवस्था है, परंतु यही हमारा लक्ष्य है और ऐसे ही लक्षण होता है। और ये भी सब कैसे होने चाहिए, नेचुरल, सहज। यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हैं। यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते, वाह वाह बच्चे वाह के गीत होते। तो साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते। आप सब भी यही चाहते हो ना, बाप भी चाहते, आप भी चाहते, फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम, फिर बीच में क्या, बाकी क्या है, आप भी चाहते मैं भी चाहता, अब क्या प्रॉब्लम क्या है। तो अभी अच्छी तरह से जानते हो, आपस में वर्कशॉप करते हो ना, बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी, चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए। इसका मूल आधार क्या है, दो स्थितियां बताई बाबा ने, हमको ज्यादा से ज्यादा दो वतन में रहना है, एक आकारी दुनिया, आकारी स्थान, आकारी स्थिति, आकारी फरिश्ता, सूक्ष्म वतन, निराकारी स्थिति, ये दोनों ही बेहद की स्थिति है। आज के वरदान में बाबा ने कहा अगर तुम बेहद की स्थिति में स्थित हो जाओ तो चार बातें हो, चार बातें हो जाएगी, बंधन मुक्त, उसमें भी इस दुनिया के वायुमंडल से, एक दूसरा वाइब्रेशन से यहाँ के, दो तीसरा तमोगुणी वृत्तियों से, और चौथा माया के वार से मुक्त हो जाओ। यही जीवन मुक्त स्थिति है, यही बंधन मुक्त स्थिति है, बंधन मुक्त स्थिति ही जीवन मुक्त स्थिति। पर कब, जब तुम बेहद की स्थिति में स्थित होंगे। तो बेहद की स्थिति है आकारी फरिश्ता स्वरूप या फिर निराकारी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, आज कहा बाबा ने ये देही अभिमानी स्थिति की बेहद की स्थिति है। अगर इस स्थिति में स्थित हो तो यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां और माया या विकार के वार आत्मा पर नहीं होंगे, अगर ये दो स्थितियों में स्थित हो तो, क्योंकि ये दोनों ही बेहद की स्थिति है, हद की नहीं। तो चाहे आकारी फरिश्ता, फरिश्ता स्थिति देहभान से ऊपर की स्थिति है, निराकारी स्थिति भी देहभान के ऊपर की स्थिति है, और दोनों ही निराकारी और निर्विकारी स्थिति है। तो बाबा ने क्या कहा होगा फिर, इसका मूल आधार क्या है, अगर निराकारी और निर्विकारी स्थिति बनानी है तो निरंकारी बनना है। तो बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी, चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए। उसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है, सबसे विशेष कहने में भल एक ही शब्द देहभान है, लेकिन देहभान का अभिमान का विस्तार बहुत है। देहाभिमान का विस्तार बहुत बड़ा शब्द है। इसके लिए हमारे किसी भी प्रश्न का उत्तर केवल देहभान नहीं हो सकता या देहाभिमान नहीं हो सकता है। स्पेसिफिक आंसर चाहिए, क्यों होता है तो देहभान, ये कोई उत्तर नहीं। एक है देहभान, एक है देह अभिमान, एक देह अहंकार, अलग अलग छोटा छोटा दादी जानकी इसके बहुत सारे अर्थ बताते हैं। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं है, नहीं है वो कौन सा? उसमें भी क्या
विशेषता
नहीं, वो विशेषता सूक्ष्म है। मोटे रूप का अहंकार मोटे, वो तो बहुत ही सूक्ष्म है।
देह अहंकार मोटा रूप है,
देह अभिमान, हाँ मतलब देह अभिमान
अहंकार,
चलो वो तीनों एक ही ले लो, देह अभिमान, देह भान और देह अहंकार। अब इसका मोटा रूप कौन सा है? हाँ, चाहे स्वयं की देह, चाहे औरों की देह, अगर औरों की देह का भी आकर्षण है तो भी देह अभिमान है, देह का आकर्षण, ये मोटे रूप का है। और फिर स्थूल में तो बहुत सारे, कई बच्चे इस मोटे रूप में पास है। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव या अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध में अपने संस्कार विशेष, बुद्धि विशेष, गुण विशेष, कोई कलाएं विशेष, कोई शक्ति विशेष, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। मोटा रूप क्या है? देह का आकर्षण। किसकी देह का आकर्षण? स्वयं, स्वयं से ज्यादा दूसरा, दूसरों की देह का आकर्षण, ये स्थूल। सूक्ष्म में क्या है? बुद्धि, संस्कार, मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं, अपने ही संस्कार का अभिमान, संस्कारों का अभिमान। अहंकार दो रीति से काम करता है, एक कि मुझे, मेरे में सब कुछ है, मतलब कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मेरे पास ये भी है, हाँ, वो एक वो रीति से। अहंकार की एक दूसरी भी विधि है, दूसरी भी रीति से ऑपरेट करता है। जैसे कोई कहता है कि मैंने अपनी आवश्यकताओं को बहुत कम कर दिया है, पर ये कहते समय आंखों में एक चमक है, एक अहंकार जागृत है, वो भी कह रहा है बड़ा उपलब्धि हो गई है, जैसे कुछ प्राप्ति हुई है कि मैंने ये भी छोड़ दिया, मैंने वो भी छोड़ दिया।
मैं किसी से सेवा नहीं लेता,
मैंने किसी से सेवा लेना तो मैंने कब का छोड़ दिया, तुम अभी तक लेते हो क्या? मैंने ये भी छोड़ दिया, मैंने वो भी छोड़ दिया, छोड़ने का अहंकार है, छोड़ने का, जो त्याग किया उसका अभिमान। मैंने ये भी छोड़ा, मैंने वो भी छोड़ा, मैं तो घर गया ही नहीं, 20 साल हो गए, तुम क्या जाते रहते हर 6 मास में? वो भी एक रीति से, उसमें भी अहंकार एक रिक्तता है, एम्प्टीनेस है, जो भरने का प्रयास कर रहा है वो किसी भी रीति से भरता है फिर अपने आप को, उसको कुछ चाहिए, वो छोड़कर भी कुछ अपने होने की, अपने अस्तित्व की, क्या कह रहा है वो, अपने अस्तित्व को सिद्ध करना चाहता है कि मैं हूं, ये उसकी आंतरिक इच्छा है। वो चाहे फिर उसके लिए उसे कुछ इन चीजों का भी आधार लेना पड़े कि मैंने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, मैंने, मेरी आवश्यकता है बहुत कम है मेरी, मैं एक ही बार भोजन करता हूँ या ये करता हूँ या वो करता हूँ, ये सब भी अहंकार के ही सूक्ष्म रूप है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि विशेष, संस्कार विशेष, गुण विशेष, कलाएं विशेष, अपने अंदर जो कलाएं है उनका अहंकार, शक्ति विशेष, मुझ में सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, तुम्हें बहुत कम है, उसका अभिमान था अहंकार। बाबा ने तीन शब्द कहे, अहंकार, नशा और रोग। अहंकार और नशा होता है, अहंकार तो नहीं है पर नशा है,
मतलब मर मर के मरते रहो।
नशा है एक चीज, मेरी पहचान बहुत है, अभी इसमें अहंकार की बात नहीं है पर नशा है इस चीज का, कुछ भी काम हो तो बोल देना, टोली वगैरह चाहिए तो बोल देना, दिला देंगे तुम। नशा है इस चीज का, ये भी सूक्ष्म अंग है, रोग। जैसे मैं जाता हूं सब शांत हो जाते हैं, रोग नशा रोग अहंकार। अहंकार अंधकार, अहंकार और अंधकार पर्यायवाची है, अंधकार और अहंकार। अहंकार अर्थात आत्मबोध का अभाव, अहंकार अर्थात आत्मस्मरण का अभाव, अहंकार अर्थात अपने को आत्मा के अतिरिक्त और कुछ समझना, यह अहंकार। अहंकार अर्थात अंधकार, एक्चुअली उसे खत्म करना, यह संकल्प की भी मुझे निरहंकारी बनना है, इसमें भी अहंकार समाया हुआ है। मुझे निरहंकारी बनकर ही रहना है, ये जो संकल्प है इसमें भी अहंकार है सूक्ष्म। अहंकार से मुक्त होना, ये शब्द भी एक रीति से है, क्योंकि शब्द है नहीं हमारे पास, परंतु ये शब्द भी कहना गलत है। अहंकार को मिटाना ये भी गलत है, अहंकार से मुक्त होना ये भी एक रीति से गलत है, क्योंकि वो अंधकार है।
तो कहना क्या है
वो, कहना क्या, वो अज्ञात है। कहना है ही नहीं, शब्दों में सामर्थ्य नहीं है उस स्थिति का वर्णन करने के लिए। अहंकार वो है, अंधकार है। अहंकार को अंधकार से लड़ाई की जा सकती है क्या? अंधकार एक कमरे में है 100 साल से, एक कमरा बंद है जिसमें अंधकार है, अभी उसको लड़ाई करके भगाएंगे क्या? करेंगे वहां जगाना है बस ज्योति को, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है। वो ज्योति का अभाव, वो प्रकाश का अभाव, वो आलोक का अभाव ही अहंकार भास रहा है, पर है नहीं पर भास रहा है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो इसके लिए उसको मिटाना, उसको खत्म करना, उससे मुक्त होना, मुझे निरहंकारी बनना ही है। देखता हूं कैसे नहीं बनता हूं, इस संकल्प में भी सूक्ष्म अहंकारी समाया हुआ है। अज्ञान आत्मबोध का अभाव ही अहंकार है, आत्मस्मरण का अभाव ही अहंकार है, आत्मा के अतिरिक्त अपने आप को कुछ समझना ही अहंकार। जब हम आत्म स्थिति में है, आत्म अभिमानी स्थिति में है, तो वहां अहंकार का अस्तित्व ही नहीं है। जहां संपूर्ण कमरे में प्रकाश है, यहां अहंकार अंधकार क्या है हमको पता ही नहीं है अंधकार, क्योंकि यहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती है। जहां आत्माभिमानी स्थिति है वहां अहंकार नहीं है। जरूर देह अभिमान है इसके लिए अहंकार है, और फिर अहंकार से लड़ने की एक संघर्ष चल रहा है। हाथ में तलवार लिए हम अहंकार से न जाने कितने सालों से लड़ रहे हैं, पर प्रयत्न क्या करना है? आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने का। तो अहंकार का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो अहंकार नशा रोग ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है इनमें से, तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकता है, ना निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ता में भी देहवान नहीं, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। दोनों स्थितियों को प्राप्त करना है तो दोनों ही अहंकार से मुक्त स्थिति है। अहंकार से मुक्त कहें या वहां अहंकार है ही नहीं। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी है, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज चेक करो। किसी भी प्रकार का अभिमान वह अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी नहीं रहा हुआ है तो नहीं, जो समय प्रमाण और कहां सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है। कोई कहता है ना मुझे क्रोध आ गया, क्रोध है नहीं, वो आया कहां से? वो है, वो खाली प्रकट हुआ है उस समय। अहंकार तो पहले से ही है, वो है ही वहां, परंतु जब तक कोई कुछ कहता नहीं, विरोध नहीं करता, तब तक हमको लगता है हम में नहीं है, वो है ही। जब कोई चोट करता है कोई कि तुमने ये काम ठीक से नहीं किया, तो वहां वो निकलता है बाहर, वो उसका क्या कहते हैं मैनिफेस्टेशन, वहां वो निकल रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है वहां पर वो है ही। तो उसको उसी शांत स्थिति में जब किसी ने कुछ कहा नहीं, तब उसको ढूंढना है कि वो है या नहीं है और कहां है। कोई कहे तब तो वो केवल बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जब कोई नहीं कह रहा तो वो नहीं था, वो है वहीं पर है। ये कहा ना, सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में। सेवा प्रमाण सेवाओं में वो इमर्ज होता है, मेन तो सेवाओं में, योग में कहा अहंकार, या ज्ञान में एक रीति से उतना नहीं, पर जो सेवाओं का जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा अहंकार होता है। आप जिसमें एक्सपर्ट है और कोई आके कह दे सेवाधारी कि ये काम तुमने ठीक नहीं किया, हम 20 साल से कर रहे हैं, वो अभी आया और सिखा रहा है हमको, तो वहां पर अपनी वरीयता, वरीयता कहते क्या कहते हैं उसको, सीनियोरिटी का अहंकार, अपने पुराने होने का, अपने सीनियर होने का, अपने ज्ञान में लंबे समय से चलने का। क्योंकि जो नई आत्माएं आई है, नई आत्माएं जो आती है, शायद वो कोई दिव्य आत्मा होगी, हमें क्या पता। उसने वो चीज पकड़ ली जो हम 20 साल में नहीं पकड़ पाए, उसने वो चीज को ग्रहण कर लिया जो हमने कई सालों के प्रयास के बाद ग्रहण नहीं किया, तो उससे भी सीखना है। इसके लिए ये बड़ा ही सूक्ष्म है अहंकार, अपने अहंकार को पकड़ना, या फिर अहंकार को मिटाने तो नहीं पर एटलीस्ट बोध तो हो, तो एक दिन मिट जाएगा। अभी मिटा नहीं है पर हमको पता चाहिए कि मुझ में ये अहंकार है इस बात का।
नरक का जो टेम्पल है ना, उसके ऊपर एक मैग्नेट जो फिट करना था, वो किसी कारीगर को आया नहीं, तो जो कारीगर जो 12 साल पहले घर छोड़ के चला गया था, वो मंदिर निर्माण किया, उसका बच्चा जब 12 साल हो गया, उनको पता चला वहाँ एक चल रहा है, पूरा नगर नगर नगरा दे दिया, ये मंदिर में ये फिट करना है। कितना बड़ा काम है, मैं तो फिट कर सकता हूँ। उसको साक्षात्कार हुआ, वो चल पड़ा, जाके फिट कर दिया। तो जितने भी सब बड़े बड़े कारीगर था, बोला हम लोग का तो सब चला जाएगा, राजा को पता चला अगर छोटा बच्चा कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, ऊपर से वो बच्चा को समुद्र में गिरा दिया। तब से वो कोणार्क टेम्पल में मंदिर प्रति ये मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं हुआ, ऐसे तो ऐसे रहेंगे। जो अंग्रेज ने वो उसका तोड़ के ले चला गया
था। तो इसीलिए जो भी नई आत्माएं होती है ना, उनमें कुछ पावर तो होती है, जो सेवाधारी आ रहे हैं यहाँ या कोई इसी तरह से, चाहे कोई अज्ञानी भी हो, अभी ज्ञान में भी नहीं है। एक हमारा होता है ना कोर्स कराना या ज्ञान सुनाना, हम इस नशे से सुनाते कि हमको पता है, इनको पता नहीं। हमें एक सूक्ष्म अहंकार समय हुआ होता है ये बताते समय भी, और कुछ कुछ तो सेंटरों पे ऐसा है कि कोई प्रश्न पूछता है तो पूछने भी नहीं देते उसको, पहले हमारा सुनो, पूछना बाद में जो भी है। नहीं मतलब उसमें भी एक है कि नम्रता से कि भाई आपको बाद में बताएंगे, पर एक होता है ना हमें है आपको नहीं पता। जैसे वो साधु होते ना जिनको अपने सिद्धांतों का अहंकार होता है, बस वो निकल पड़ते हैं गांव गांव में कोई मिले शास्त्रार्थ करने के लिए और हराऊं किसको, जैसे वो तलवार लेकर कोई निकलता है कि कोई मिले और हिंसा करूं, वो भी हिंसा ही है एक रीति से, कि कोई मिले और अपने शास्त्र और हमको उसको सिद्ध कर दूं कि भगवान, कोई मिले जो मानता है कि भगवान सर्वव्यापी है कहने वाला, ढूंढ रहे जैसे, अच्छा मिला आ जाओ अभी बैठो और सिद्ध करो उसके सामने, एक ये। दूसरी भावना है कि सबको परमात्मा से का परिचय हो जाए, सबका मिलन हो जाए उससे, जो हमने पाया वो उसको मिल जाए, एक तो ये एक श्रेष्ठ भावना, और दूसरा केवल कोरा ज्ञान, केवल ज्ञान, और ज्ञान से तो अभिमान आता है ना, अहंकार आता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है आत्मा का, अहंकार बढ़ने लगता है। फिर जैसे मैंने कहा ना, मैंने ये भी छोड़ा, मैंने वो भी छोड़ा, उसका भी अहंकार आना चालू होता है, वो आत्मा को पकड़ में ही नहीं आता है। ज्ञान, इसके लिए बाबा योग को बहुत महत्व देते हैं। ज्ञान के साथ अगर योग नहीं है, केवल ज्ञान है, तो वो ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है, चाहे वो प्रोफेशन का हो या अध्यात्म हो या कोई भी चीज का हो। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते जाता है, व्यक्ति अपने आप को ऊंचा समझता है और बाकी लोगों को नीचा, व्यक्त ना करेगा पर मन में समझता जरूर, मुझे ये आता है, इनको ये नहीं आता, ये भी सूक्ष्म अभिमान अहंकार ही है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है, जो छोटा सा अंश है बस वही वंश बन जाएगा और धोखा देगा। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है, चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना, देखो कितनी सूक्ष्म बात बाबा ने कही, ये मनोविज्ञान है, यहाँ पर साइकोलॉजी है। आज व अभी न मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है, न मालूम आज अकेलेपन या निराशापन या व्यर्थ संकल्प का अचानक तूफान क्यों आ गया। अमृत वेला किया, क्लास भी किया, सेवा भी की, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है? सब कुछ अच्छे से किया, अमृत वेला पावरफुल किया, फिर क्लास किया, फिर ज्ञान का चिंतन भी किया, सेवा भी बड़ी लगन से की, पर उसके बाद में भी जैसे खुशी गायब है, न मालूम कैसी जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी है ही नहीं, न मालूम आज अकेलेपन व निराशा या व्यर्थ संकल्प का अनुभव क्यों हो रहा है। ये बहुत ही साइकोलॉजी की बात है। कारण क्या होता है? मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई, हमने अपने आप को देखा सब ठीक था आज तो, पर फिर भी खालीपन, फिर भी रिक्तता, फिर भी कोई असंतुष्टता, बहुत ही सूक्ष्म निराशा है, उदासी है, अंदर से कुछ कर रहे हैं परंतु अंदर से इच्छा नहीं है कुछ करने की। जैसे कि वो कल वाला पहला कहता है पत्थर तोड़ रहा हूं, वही अवस्था है। तो चेक करो हर चीज में, पत्थर तोड़ रहा हूं, आजीविका कमा रहा हूं, या भगवान का मंदिर बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तीनों कार्यों में से हर चीज में चेक करो। योग करते समय चेक करो, पत्थर तोड़ रहा हूं योग में कि आजीविका कमा रहा हूं कि मंदिर बना रहा हूं। ज्ञान में भी चेक करो, सेवाओं में भी चेक करो, हर चीज में यही चेक कर क्या रहा हूं। कोई गलती नहीं कि स्थूल मोटे रूप से तो सब ठीक है, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। बहुत पावरफुल वाक्य है, सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। जितना अभिमान हमारा सूक्ष्म अहंग अभिमान, वो सूक्ष्म में प्रकट होना जरूरी है। इसके लिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी। वैराग, वैराग शब्द तो इतना शोभता नहीं इधर, उदास उदास फील होगा, मतलब ज्ञान से ही वैराग, परिवार से ही वैराग, या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाए, क्या रहना है तो
देख लिया
बस, देख लिया चलो एकांत का कोई स्थान मिल जाए, या सोचेंगे सो जाए। कई होते हैं ना जिनको सोने की बहुत इच्छा होती, बस सोते रहो, वो भी उदासी की निशानी है। अति निद्रा और अनिद्रा दोनों डिप्रेशन के सिम्टम्स है। बहुत नींद आना और बिल्कुल भी नींद आना, कुछ कुछ बहने आती है ओपीडी में, क्या प्रॉब्लम है, नींद ही आती रहती है दिन भर, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, बस ऐसे लगता है मुरली हो गई, मुरली सुनाई कि सो जाओ, फिर सीधा उठते भोजन बनाए, भोजन खाया, वापस सो गए, फिर शाम में कहीं गए कोई क्लास कराने गीता पाठशाला में, आए कि तुरंत सो गए भोजन के बाद, इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की बस, और वो भी जो कर रहे है बस कर रहे है, मुरली उठे मुरली पढ़ानी पढ़नी है पढ़ ली, कोई कहीं जाना है गांव में गीता पाठशाला में गए करा दिया कोर्स और आ गए और सो गए, कोई और दूसरे कोई इच्छा नहीं, ना कोई प्लानिंग, बुद्धि सुन है बस। ये भी एक डिप्रेशन की विषाद की अवस्था है। सो जाए, रेस्ट में चले जाए, रेस्ट में चला जाए, ये ब्राह्मणों का शब्द है, दिख नहीं रहे कहाँ है, रेस्ट में ये रेस्ट में शब्द जो है ना, बाकी लोग संसार के लोग यूज नहीं करते, इधर शरीर साथ नहीं दे रहा है, कहाँ है, रेस्ट में है ये परिवार से किनारा कर ले थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा टाइम। इन सब स्थितियों का कारण है, इन स्थितियों का कारण है अंश की कमाल होती है, ये सब अंश के कर्तव्य है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो बाबा ने कहा। तो संपूर्ण निरंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती है, जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना, ना चाहते भी यह स्थिति आ जाती कि बस वही सुबह उठो अमृत वेला मुरली और वही डिपार्टमेंट और वही लोग दो तीन और वही भोजन हर मंडे को वही ट्यूसडे वही और वही वही शाम का वही सब वही वही, कुछ तो नया चाहिए। तो ये जो है ना सदा के एक ही दिनचर्या में चलना है क्या?
अगर सूक्ष्म में नवीनता नहीं हो रही है तो स्थूल में नवीनता की,
हाँ तो सूक्ष्म में योग में अगर नवीनता है, ज्ञान में अगर नवीनता आ रहे, तो वो जो स्थूल कर्म है वो उसमें हमको ज्यादा कुछ ये नहीं लगेगा, हाँ वो स्वतः ही होगा उसमें। पर न योग है और ज्ञान के अभाव में जो कार्य है उसमें नवीनता चाहिए, फिर ऐसा लगता है कब तक इधर ही करते हो। और देखा गया है जिन लोगों ने कई डिपार्टमेंट चेंज किए वो आखिर घर जाना ही पड़ा, वो टिक नहीं पाए, पहले डिपार्टमेंट में गए यहाँ का इंचार्ज ठीक नहीं है, चेंज करा दो। चलो चेंज कर रहे थे, दूसरे डिपार्टमेंट में गए, यहाँ की दिनचर्या ठीक नहीं, योग के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, और गए और चेंज करा दी, किसी और डिपार्टमेंट में गए, यहाँ के जो सहयोगी है वो जरा ठीक नहीं है, चेंज करा दो, वहां से चेंज करा दिए। यहाँ तो नाइट है, हमारा योग नहीं होता है इसमें, नाइट ड्यूटी में, और चेंज करा दो, चलो चेंज करा दिया। ये जो चेंज करने वाले हैं ये कहीं टिक नहीं सकते। एडजस्ट पावर ये भी देखा गया, जो बहन है ए सेंटर से वो सेंटर, वो सेंटर से वो सेंटर, और वो सेंटर से वो सेंटर, फिर वहां से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से इधर, और उधर से उधर, स्थिति नहीं बन पाती। ये सब आंतरिक हलचल की निशानी है, आंतरिक हलचल है, उसके वजह से किसी डिपार्टमेंट, कोई भी एक विभाग महकमा उसको संतुष्ट नहीं कर पाता, कोई व्यक्ति से संतुष्ट नहीं हो पाते, कोई एक सेवा से संतुष्ट नहीं हो पाते। वो सेवा की कुछ दिन के बाद ऐसा लगता है अब ये छोड़ो दूसरी करो, वो कर लिया भी लगता है दूसरी करो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आंतरिक स्थिति है, ज्ञान और योग की वो पावरफुल स्थिति ही नहीं है। वो जो परते हैं इतनी सारी, वो एक एक खुलती रहती है असंतुष्टता की। ऐसा लगता है थोड़े देर के लिए संतुष्टता मिली, वो परत खुली, दूसरी परत है असंतुष्टता की, वो खुली हुई लगता है तीसरी परत है। आत्मा कहीं खो जाती है। सब चीजों का आधार एक ही है, ये सब जो हो रहा है ज्ञान की कमी। अपने ज्ञान को बढ़ाना और अपनी तपस्या को बढ़ाना, ये अगर दो आंतरिक ये कर्म चलते रहे अंदर से, तो ऊपर से सब कुछ सहज है। यही स्थिति बाबा को चाहिए, नेचुरल, सहज, निरंतर। तो अभी का कल पढ़ेंगे बाबा,
बहुत है
इतना बहुत है। ओम शांति।